بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, शहरीवार की 31, सफर की 25 और सितंबर की 22 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आज की बात और अंत में पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मिसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का समर्थन करते हैं। ईरान, रूस और चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। भारत के कई राज्यों में पीएफआई के कार्यालयों पर छापेमारी हुई है। रशीद दोस्तम ने कहा कि अगर हमें समर्थन मिले तो 2 हफ्तों में तालिबान शासन का काम तमाम कर देंगे। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का समर्थन करता है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने जनरल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान कहा कि अमरीका की हस्तक्षेपपूर्ण और जोर जबरदस्ती की नीतियों के मुकाबले में ईरान ने भरपूर प्रतिरोध का प्रदर्शन किया है। उन्होंने भाषण के दौरान शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के फोटो को दिखाते हुए कहा कि दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाली एक सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदलने की योजना बनाई थी, जिसे जनरल शहीद कासिम सुलेमानी की कमान में ईरानी जवानों ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपराधिक कार्रवाई को न्यायपूर्ण अदालती व्यवस्था में उठाकर दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश जारी रखेंगे। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय और इंसाफ की स्थापना का समर्थन करता है, क्योंकि इंसाफ से एकता बनती है और अत्याचार से जंग की आग भड़कती है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमरीकी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि दूसरे देश भी अपने पैरों पर खड़े हों।
पूरे ईरान में 22 सितंबर से 42वां पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह आरंभ हो गया। तेहरान सहित ईरान के विभिन्न प्रांतों में इस अवसर पर कार्यक्रम और सैन्य परेड आयोजित होते हैं। केंद्रीय सैन्य परेड तेहरान में इमाम खुमैनी के मजार पर आयोजित हुई, जिसमें देश के सैन्य और सिविल अधिकारियों ने भाग लिया। बंदर अब्बास में भी सेना ने परेड का आयोजन किया, जिसमें संसद सभापति मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने परेड की सलामी ली। सद्दाम के सैनिकों ने आज ही के दिन सन 1980 में इस कल्पना के साथ ईरान पर व्यापक हमला आरंभ किया था कि एक सप्ताह के भीतर तेहरान पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। सद्दाम के सैनिकों ने विश्व वर्चस्व के खुले समर्थन से ईरान के विरुद्ध व्यापक युद्ध आरंभ किया, जो 8 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में ईरानी जनता ने ऐसे कड़े प्रतिरोध का प्रदर्शन किया जिसका उदाहरण अन्य स्थानों पर मिलना लगभग असंभव दिखाई देता है। इसी पवित्र प्रतिरोध की याद में ईरान में प्रतिवर्ष 22 सितंबर से एक सप्ताह तक पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके दौरान पूरे ईरान में जगह जगह पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 8 वर्षों के कड़े प्रतिरोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर प्रकार की समस्या और कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर भरोसा करके संसार की वर्चस्वादी शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है। इस्लामी गणतंत्र ईरान में पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है।
ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद बाखरी का कहना है कि ईरान, रूस और चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। गुरुवार को ईरान में पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर जनरल बाखरी ने बताया कि इसी साल पतझड़ के मौसम में ईरान, रूस और चीन की सेनाएं हिंद महासागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगी। ईरानी जनरल का कहना था कि संभवतः इस सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान, ओमान और कुछ अन्य देशों के सैनिक भी भाग ले सकते हैं। ईरान में पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के अवसर पर देश भर में सैन्य परेडों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सैन्य परेड का आयोजन इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी के मकबरे के निकट किया गया, जहां ईरानी सशस्त्र बलों ने सतह से सतह पर मार करने वाले रिजवान मिसाइल का अनावरण भी किया। रिजवान तरल ईंधन से संचालित होने वाला मिसाइल है, जिसमें एक अलग होने योग्य वारहेड लगा होता है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। इसे कई तरह के फिक्स और मोबाइल प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। परेड के दौरान खैबर शिकन नामक एक मिसाइल प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया।
ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि देश के परमाणु कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई दिशा भेद नहीं है। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने बल दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की पथभ्रष्टता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA पश्चिमी और ज़ायनी पक्षों के दबाव में हमेशा से ही ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में निराधार और बेबुनियाद दावे करती रहती हैं, जबकि ये दावे ईरान और IAEA के बीच जारी सहयोग से तनिक भी मेल नहीं खाता। ईरान ने भी हमेशा बल दिया है कि यह सहयोग राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मोहम्मद सलामी ने कहा कि IAEA के निरंतर रिपोर्टों के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तनिक भी दिशा भेद नहीं है, इसीलिए हो हल्ला मचाने और शोर करने से अपने लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनका कहना था कि जो लोग ईरान को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में ईरान का शामिल होना बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसका परिणाम वर्षों के प्रयासों के बाद सामने आया है, और ईरान की सदस्यता शंघाई सहयोग संगठन में स्वीकार कर ली गई।
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और प्रवर्तन निदेशालय ED ने केरल स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के कार्यालयों पर छापेमारी की है। PFI के कार्यकर्ताओं ने NIA की छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। गौरतलब है कि PFI अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाला एक संगठन है, जिस पर चरमपंथी हिंदू संगठन कट्टरवादी संगठन होने का आरोप लगाते रहे हैं। PFI के कार्यालयों पर छापेमारी केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में की गई है। वहीं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से PFI के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। छापों के बाद PFI ने एक बयान जारी करके NIA और ED के देशव्यापी छापों और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी की आलोचना की है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। पीएफआई का कहना है कि एनआईए के दावे सनसनीखेज हैं और इनका मकसद दहशत का माहौल पैदा करना है। एनआईए और ईडी ने बुधवार रात और गुरुवार सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित पीएफआई के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पीएफआई के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। पीटीआई ने एनआईए के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है।
भारत में हिंदू कट्टरवादी संगठनों द्वारा फैलाई जा रही नफरत अब देश की सीमाओं से निकलकर दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रही है। भारत के बाहर अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे बड़े देश हैं जहां कट्टरपंथी हिंदू भारत में फैल रही नफरत को जमकर हवा देते हैं और चरमपंथी संगठनों का बड़े पैमाने पर समर्थन करते हैं। हालिया दिनों में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव और उपद्रव के बाद अब वहां के बर्मिंघम शहर से भी ऐसी खबरें आई हैं। शहर के स्मिथविक इलाके के दुर्गा भवन मंदिर और कम्युनिटी सेंटर के बाहर कट्टरवादी साध्वी रतंभरा के पहले से तय कार्यक्रम का लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आरएसएस और बीजेपी की नेता साध्वी रतंभरा कट्टरवादी और मुस्लिम विरोधी हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने में उनका हाथ रहा है। प्रदर्शनकारी ये तर्क देते हुए साध्वी रतंभरा के मंदिर पहुंचने का विरोध कर रहे थे। 57 वर्षीय साध्वी रतंभरा को 20 से 24 सितंबर के बीच बर्मिंघम, बोल्टन, कॉन्वेंट्री, नॉटिंघम और लंदन के हिंदू मंदिरों का दौरा करना था। विरोध प्रदर्शन के चलते रतंभरा के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मंदिर में भारत में चरमपंथी सोच वाले नेताओं और साधुओं को आमंत्रित किया जाता है जो यहाँ के वातावरण में भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं।
तालिबान शासन ने अफगानिस्तान राष्ट्रीय प्रतिरोध की सर्वोच्च परिषद के एक सदस्य मार्शल दोस्तम के तालिबान विरोधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अफगानिस्तान राष्ट्रीय प्रतिरोध की सर्वोच्च परिषद के सदस्य मार्शल दोस्तम ने मंगलवार को कहा था कि अगर विश्व समुदाय प्रतिरोधी मोर्चे का समर्थन करे तो तालिबान शासन दो हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। दोस्तम के इस बयान पर तालिबान शासन के एक उच्च अधिकारी अनामुल्ला संगमानी ने आपत्ति जताते हुए उन्हें वतन फरोश और विदेशियों का पिट्ठू करार दिया। संगमानी का कहना था कि दोस्तम दुनिया का एक ऐसा मार्शल है जो विदेशी शक्तियों के समर्थन के बिना देश में अपने घर में भी नहीं रह सकता। वहीं दोस्तम का कहना था कि हमारे प्रतिरोध के सामने तालिबान दो हफ्ते भी नहीं टिक सकते, लेकिन इसके लिए विश्व समुदाय को हमारी मदद करनी होगी। तालिबान के पतन के बाद देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा कि हम इस योजना पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। हम अफगान जनता की मदद से तालिबान को एक बार फिर शिकस्त देंगे।
यमन की जनता ने 21 सितंबर की क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर विशाल रैली निकाली। 21 सितंबर की क्रांति की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर यमन के सादा प्रांत में इस क्रांति के समर्थन में जबरदस्त जनरैली निकाली गई। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यमन की राजधानी सना की जनता भी वर्षगांठ मनाने की तैयारियां कर रही है और सना के आसमान पर हेलीकॉप्टर चॉकलेट और मिठाइयों के पैकेट गिरा रहे हैं। यमन में इस राष्ट्रीय दिन के अवसर पर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में उपहार दिए गए। यमन के अल मसीरा चैनल ने देश भर में बड़े पैमाने पर मार्च निकाले जाने की तैयारियों का ऐलान किया और अंसारुल आंदोलन के नेता के संबोधन और राष्ट्रीय गीत सहित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण की खबर दी। रैली में शामिल लोग अंसारुल्लाह के नेताओं की तस्वीर वाले बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे और क्रांति व आज़ादी के समर्थन और यमन पर हमले की निंदा के विरुद्ध नारे लगा रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। जो बाइडन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में क्रूर और अनावश्यक युद्ध छेड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की मूल भावना का उल्लंघन किया है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनेई का कहना है कि आज ईरान रक्षा के क्षेत्र में इतना शक्तिशाली हो गया है कि दुश्मन भी जानता है कि ईरान को आंखें दिखाई नहीं जा सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात करने वाले दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और अधिकारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूयॉर्क यात्रा के तीसरे दिन जापान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से ملاقات کی۔ ایرانی راشٹرپتی نے جاپان کے پردھان منتری سے ملاقات میں کہا کہ ہمیں ایسے اپایوں پر کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے امریکی پرتیبندھوں کا ایران اور جاپان کے بیچ موجود پراچین سمبندھوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ بھارت کے گرہ منتری امت شاہ 23 اور 24 ستمبر کو بہار کی یاترا کرنے والے ہیں، جسے لے کر راجنیتی تیز ہو گئی ہے۔
اب میں نے سنا ہے کہ پریشان ہیں لالو جی، نتیش کمار جی اور اپ مکھیہ منتری تیجسوی جی، کیوں آ رہے ہیں گرہ منتری جی؟
اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ آج ایران رکشا کے چھیتر میں اتنا شکتیشالی ہو گیا ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ ایران کو آنکھیں دکھائی نہیں جا سکتی۔ سروچ نیتا کہتے ہیں کہ ایران کی کرانتیکاری اور سم ویوستھا پر سامراجوادی سرکاروں کا حملہ اسوہبک نہیں تھا، کیونکہ یہ سرکاریں ایران کی اسلامی کرانتی سے بہت ناراض تھیں۔ سمیکیا پیش کریں ساتھ ہی اختر عباس۔
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ آج ایران رکشا کھیتر میں اتنا شکتیشالی ہو گیا ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ ایران کو آنکھیں نہیں دکھائی جا سکتی۔ 8 سال تک چلنے والے پوتر ڈیفینس کے کمانڈروں اور بہادر سپاہیوں نے سپریم لیڈر سے ملاقات کی۔ پوتر پرتیرکشا کی سالگرہ کے موقع پر منائے جانے والے ہفتے کے اوسر پر کمانڈروں اور بہادر سپاہیوں اسی طرح شہیدوں کے پریجنوں نے سپریم لیڈر سے بدھوار کو ملاقات کی۔ سپریم لیڈر نے اس اوسر پر کہا کہ گزرتے وقت کے ساتھ پوتر ڈیفینس کے سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور پوتر پرتیرکشا کے تتھیوں سے نوجوانوں کو اوگت کرانا چاہیے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ ایران کی کرانتیکاری اور اسلامی ویوستھا پر سامراجوادی سرکاروں کا حملہ اسوابھاوک نہیں تھا، کیونکہ یہ سرکاریں ایران کی اسلامی کرانتی سے بہت ناراض تھیں۔ سامراجوادی شکتیاں سمجھ رہی تھی کہ یہ کرانتی کیول سامراجوادی شکتیوں کی ایک آستھائی راجنیتک پراجن نہیں ہے، بلکہ اسلامی کرانتی ورچسوادی ویوستھا کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد ایران یدھ کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایران کی سنستھاؤں اور سشستر بلوں کو سنگٹھت کرنے کی آوشکتا تھی، اور دشمن جنہوں نے اپنے ہتوں کو خطرے میں دیکھا وہ پورے دیش میں اشانتی پیدا کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے تھے، اور جب دشمن اس طرح سے اپنے لکشوں کو پراپت نہیں کر سکے تو انہوں نے عراق کے باسی شاسن دوارا ایران کے خلاف 8 ورشے یدھ چھیڑ دیا اور باسی شاسن کا سامرک وتیہ اور راجنیتک سمرتھن کرنا جاری رکھا۔ ان سمرتھنوں کا ایک اسپشٹ ادھارن تھوپے گئے یدھ میں پوروی اور پشچمی شکتیوں کے بیچ ابھوتپورو سمنوے میں دیکھا جا سکتا ہے۔
संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से ملاقات کرنے والے دوسرے دیشوں کے راشٹرادھیکشوں اور ادھیکاریوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ نیو یارک یاترا کے تیسرے دن جاپان کے پردھان منتری نے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایرانی راشٹرپتی نے جاپان کے پردھان منتری سے ملاقات میں کہا کہ ہمیں ایسے اپایوں پر کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے امریکی پرتبندھوں کا ایران اور جاپان کے بیچ موجود پراچین سمبندھوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ راجنیتک سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی رویش زیدی۔
سنیکت راشٹر سنگھ کے وارشک ستر کے 77ویں ادھیویشن میں بھاگ لینے نیو یارک پہنچے اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کرنے والے ان دیشوں کے راشٹر ادھیکشوں اور ادھیکاریوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ نیو یارک یاترا کے تیسرے دن جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدا نے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایرانی راشٹرپتی نے جاپان کے پردھان منتری سے کہا کہ ہمیں ایسے اپائیوں پر کام کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے امریکی پرتبندھوں کا ایران اور جاپان کے بیچ موجود پراچین سمبندھوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ انہوں نے اس بات پر ایک بار پھر بل دیا کہ پرمانو سمجھوتے کے لیے ہماری مکھ شرط یہی ہے کہ ایران کے ہتوں کی گارنٹی اور اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ امریکہ پرمانو سمجھوتے کو سماپت کرنے کے لیے پہلے جیسی غیر قانونی کاروائی نہیں کرے گا۔ اس بیچ لبنان کے پردھان منتری بھی راشٹرپتی رئیسی سے ملنے پہنچے۔ اس ملاقات میں راشٹرپتی رئیسی نے لبنان کو پرتیرودھ کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ آج شیتر میں لبنان کے پرتیرودھ کا اثر صاف دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اویدھ جنونی شاسن سے اگر کسی بھی طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ کیول اور کیول پرتیرودھ کا ہی راستہ ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے یہ بھی کہا کہ پرتیرودھ کی پرمکھ رنیتی ایکتا اور ایکجٹتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی گڑتنتر ایران ہر اس راستے کا سمرتھن کرتا ہے کہ جس سے لبنان میں شانتی و استھرتا استھاپت ہو سکے۔ لبنانی پردھان منتری نجیب میکاتی نے بھی ایران دوارا نسوارتھ اور نرنتر لبنان کے کیے جانے والے سمرتھن پر آبھار ویکت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ ایران کے ساتھ سب سے اچھے سمبندھ رکھنے کی اچھا رکھتے ہیں۔ اس بیچ فن لینڈ کے راشٹرپتی سولی نینسٹو بھی راشٹرپتی رئیسی سے ملنے پہنچے۔ نینسٹو نے دیپکشیہ سمبندھوں میں وستار کی بات کہی اور لاکھوں افغان شرنارتھیوں کی میزبانی کرنے پر ایرانی راشٹر کا دھنیواد کیا۔ فن لینڈ کے راشٹرپتی نے ایران سے آہوان کیا کہ وہ روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کی سماپتی کے لیے مدھیست کی بھومیکا نبھائے۔ اس ملاقات میں راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ افغانستان آج جو اس استھتی پر پہنچا ہے اس کے لیے اس دیش میں امریکہ اور ناٹو کی 20 سال کی اپستھتی مکھ طور پر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انتراشٹریہ استر پر ساری سمسیاؤں کا کارن پشچم کی دوہری نیتیوں کا نتیجہ ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے امریکہ دوارا ایرانی راشٹر کے خلاف لگائے گئے امانوی اور اتیاچار پور پرتیبندھوں کا الیکھ کرتے ہوئے فن لینڈ کے راشٹرپتی کو ایران آنے کا نمنترن دیا اور کہا کہ آپ ایران آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ امریکی پرتیبندھوں کے باوجود ہم نے وکاس کی کن اونچائیوں کو چھوا ہے۔ اسلامی گڑتن ایران کے راشٹرپتی کی نیو یارک یاترا کے انتم پڑاؤ میں ان کا کئی انتراشٹریہ چینلوں کے ساتھ انٹرویو ہے۔ نیو یارک استھت سنیکت راشٹر سنگھ کاریالے سے علی رجبی کی رپورٹ۔
بھارت کے گرہ منتری امت شاہ 23 اور 24 ستمبر کو بہار کی یاترا کرنے والے ہیں جسے لے کر راجنیتی تیز ہو گئی ہے۔
بھارت کے کیندریہ گرہ منتری امت شاہ کے آگامی 23 اور 24 ستمبر کو بہار کے سیمانچل شیتر کے دورے کو لے کر راجنیتی تیز ہو گئی ہے۔ راشٹریہ جنتا دل پرمکھ لالو پرساد یادو نے کہا کہ امت شاہ مسلم بہل شیتروں میں اپنی ریلی کرنے والے ہیں جس کے پیچھے ضرور کوئی منشا ہوگی، اتہ پارٹی کو ان کے منصوبوں کو لے کر سچیت رہنے کی آوشکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امت شاہ بہار کے پورووتر میں سیمانچل کا دورہ کرنے والے ہیں جس میں پورنیا، کٹیہار، ارریا اور کشن گنج ضلع شامل ہیں، جہاں ورش 2011 کی جن گڑنا کے انوسار مسلمانوں کی بڑی جن سنکھیا رہتی ہے۔ पटना में हुई आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने, जो पिछले दिनों काफी अस्वस्थ रहे थे, कहा कि हर किसी को उनके अनुसार भाजपा की सांप्रदायिक सोच और झूठ से दूर रहना चाहिए। उधर गृह मंत्री की बिहार यात्रा पर बिहार के सत्तारूढ़ दलों के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी का उत्तर देते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा,
अब मैंने सुना है कि परेशान है लालू जी, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी? तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीसा देना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है इसका? फिर वही भाषा, नरेंद्र मोदी जी बिहार नहीं आएंगे, बिहार में प्रचार नहीं करेंगे, क्यों आएंगे? बिहार भारत का अंग।
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है एवं आगे बढ़ना है। भाजपा नेता एल के आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने वाले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने भाजपा के साथ कभी समझौता नहीं किया और मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है। उन्होंने महागठबंधन से देश को कमजोर करने वाले तत्वों का पर्दाफाश करने का आह्वान किया और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मिलकर काम करने पर संतोष जताया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा का एक मजबूत विकल्प पेश करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मुहिम शुरू की है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद वे भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इसी संदर्भ में भेंट करेंगे। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, आज की बात।
आज की बात, दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसाओं के बढ़ते कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। भारत में कितने तरीकों से स्त्रियों पर हमले होते हैं, अगर उसको कागज पर लिखने की कोशिश की जाए तो पूरी एक कॉपी कम पड़ जाएगी। सारी हिंसा सिर्फ दो ही बिंदु पर समाप्त हो जाती है कि सरकारी कार्रवाई हुई या नहीं, उसके बाद हिंसा किसी और रूप में कहीं और जारी रहती है। आज हम लखीमपुर खीरी के बारे में बात कर रहे हैं, कल ऐसी भयानक घटना कहीं और दोहराई जाएगी। बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर इस पार्टी की सरकार बनाम उस पार्टी की सरकार की सियासत हो चुकी, अपराधियों के मजहब को लेकर सियासत हो चुकी, मगर लड़कियों के खतरों में कोई कमी नहीं आ रही है। भारत के अलग अलग राज्यों से लड़कियों और स्त्रियों की हिंसाओं की खबरें आती हैं। महाराष्ट्र और लखीमपुर खीरी की घटनाएं अलग अलग हैं, मगर दोनों में लाचार लड़कियां हैं। महाराष्ट्र में भी एक बेटी के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को तीन लोग मोटरसाइकिल से अगवा करके ले गए, उसके साथ बलात्कार किया और हत्या कर दी, उसके शव को पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया। पिता का आरोप है कि पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच नहीं की। इस संबंध में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के पिता और गांव वालों का कहना है कि
जी, वो उस लड़की ने जो बताया था कि मेरा मर्डर हो जाएगा, ऐसा वो रिकॉर्डिंग हुआ था, वो अच्छा। पुलिस वालों को सुनाया था,
डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि हमारे पुलिस वाला नहीं लिख के दिए थे, ऊपर के ये डाग है क्या, उसका रखते है क्या, क्या है इतना तपस का, वही देखने का,
बाकी नहीं बलात्कार का वो देखने का नहीं बोला।
पिता ने शव को सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन मामला यह था कि सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। इसीलिए ठाणे की एक सामाजिक कार्यकर्ता पंडिता पुंछे से संपर्क हुआ। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया और उनसे मुलाकात की और उन्हें सब कुछ बताया।
मैंने वो बात सीएम साहब से मिलके पूरे जो पेपर थे उनको मैंने सौंप दिए और मैंने उनको बोला कि सर आप इसमें पर्सनली ध्यान देकर, एक महीने से ज्यादा हो गया है ये बॉडी पे अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो आप जरा जो वहाँ के एसपी साहब हैं तो आप उनसे बात करो। तो मेरे सामने से सीएम साहब ने इमीडिएटली एसपी नंदुरबार उनको फोन लगाया और उनको उन्होंने सीधा बोल दिया कि एक महीने तक अगर बॉडी वैसे की वैसी पड़ी है तो आप थोड़ा ध्यान दो। सेकंड थिंग, आप अगर उनकी मांग है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए तो आप दूसरा डॉक्टर बुला के आप पोस्टमार्टम करके उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो।
विधान परिषद की उप सभापति नीलम गौरे ने भी पीड़िता के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया।
मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है, हमको और गंभीरता से इसके बारे में 376 को अमल में लाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो गृहमंत्री अमित जी शाह को ये विनंती करूंगी कि पूरे हिंदुस्तान में 376 की जानकारी हर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट करते हैं उन डॉक्टर्स को भी मालूम होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर भी नहीं थी।
लखीमपुर खीरी की घटना में भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब बिल्कीस बानो के बलात्कार के दोषियों को माला पहनाया गया तब मंत्री नहीं बोल सके कि यह गलत है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पीढ़ियां तक कांप उठें। भारतीय मीडिया भी उस समय खामोश हो गया और समाज भी चुप हो गया। कुल मिलाकर इस राजनीति में निशाने पर महिला ही होती हैं। आप देखिए कि झारखंड में क्या होता है, लखीमपुर में क्या हो रहा है, बदायूं में क्या होता है, सबसे पहले बिल्कीस बानो के मामलों में क्या हुआ। तो क्या ये सब मामले इस बात की निशानी हैं कि डर ही खत्म हो गया है कि कोई सजा होगी, इसीलिए इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना कहती है कि
देखिए दुख की बात है कि मामले चाहे अलग अलग प्रदेश से आ रहे हो या अलग अलग बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, अलग अलग तरह से हो रहा हो, पर सच्चाई तो यही है कि अत्याचार हो रहे हैं एंड देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब बिल्कीस बानो बहन का केस मैं उसको सबसे ऊपर हायरार्की में ये रखूंगी कि ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन किसी केस में हुई है तो वो इस केस में हुई है। पूरे विश्व में हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है और पड़ेगा अगर हमने उन आरोपियों को अंदर नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है और अगर उसके आरोपी इस तरह से मिठाई के द्वारा फूलों के द्वारा स्वागत करे जाएंगे तो जो ये चंडीगढ़ में हुआ या चाहे वो लखीमपुर खीरी में हुआ वो होगा, वो नहीं रुकेगा। क्योंकि ये क्या संदेश दे रहे हो आप? अगर आपका संदेश ये है कि आप रेप कर दीजिए, बच्चों को मार दीजिए या आप मर्डर भी कर दीजिए, रेप के साथ साथ बहुत महिलाओं के साथ रेप किया, खाली बिल्कीस बहन का रेप नहीं किया उन्होंने, उसके बाद आप आइए आपका मिठाइयों से स्वागत होगा और आपको सरकार भी सपोर्ट करेगी, तो आप ये क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मैं तो इन सबको एक दूसरे से जोड़ के देखती हूँ और जो अभी चंडीगढ़ में फिलहाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी सारी बच्चियों को इतनी हरासमेंट से गुजरना पड़ा और अभी भी मेरी चिंता सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति को लेकर है। जैसे खबरें आ रही हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर उनको एंग्जाइटी अटैक पैनिक अटैक वो सब होगा और उनको जरूरत है इस समय सपोर्ट की, उस प्रशासन के सपोर्ट की, और मुझे लगता है जब तक उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं डाला जाएगा ये ऐसी चीजें हमें और सुनने को मिलेंगी। और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि निर्भया के बाद चीजें नहीं बदली हैं और आज भी हम ये सब चर्चा कर रहे हैं।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात। योग्यता की बात से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुरुषों और लड़कों को ये लगता है कि वो कुछ भी करें उन्हें कुछ सजा होने वाली नहीं है। तो किस चीज ने लड़कों या पुरुषों को दुस्साहसी बना दिया है, विचार सुनिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दीपिका भारद्वाज के।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं बहुत हार्ड, पिछले 3-4 दिनों में खासकर जो केसेस आए हैं बहुत ज्यादा दिल को झकझोर देने वाले हैं। वो इमेजेस जिसमें 2 बच्चियों को पेड़ से टांग दिया, इतने जघन्य अपराध है कि दिल बहुत ज्यादा कचोट जाता है कि हो क्यों रहा है। लेकिन जैसा आपने बोला नगमा, 2012 में निर्भया के बाद कानून दुरुस्त कर दिए गए, 2012 के बाद सिस्टम को दुरुस्त किया गया कि अगर महिला कोई कंप्लेंट लेकर आती है तो उसकी कंप्लेंट ली जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स और सब चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी ताकि इन क्राइम्स में रिपोर्टिंग क्विक हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी ताकि इन केसेस का ट्रायल जल्दी हो सके और कन्विक्शंस हो सके। लेकिन 10 साल में मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन या फिर क्या लॉज में जो चेंज आए थे उसका इंटेंट जो था जमीनी सच्चाई वैसी एक्चुअल में है कि नहीं है, क्योंकि केसेस अब भी उतने ही लंबे लंबे के कोर्ट्स में पहले की तरह चलने लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो चेंज और जो बदलाव हम लोग शायद चाहते थे वो अभी तक नहीं आया है। बिल्किस बानो का केस बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉकिंग केस है, उसमें जो हुआ इट इज अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एंटायर सोसाइटी, आई होप वो रिकंसिडर होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी नगमा की, महिलाओं के हम गुनाहगार हैं लेकिन हम शायद और भी बहुत लोगों के गुनाहगार हैं, क्योंकि क्राइम हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ। और पुलिस जो है कहीं ना कहीं उसकी जो खामियां हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म की खामियां हैं और जो एक 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 लचर सा सिस्टम है खासकर पुलिस के लेवल पे, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रीजन है लोगों में डर ना होने का। और एक और चीज मैं नगमा बोलूंगी कि जहां कन्विक्शंस होती हैं, हम लोग अब जैसे आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला आया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना वहां पर हुई है, लेकिन जब लोगों को सजा मिलती है नगमा तब भी बहुत जरूरी है कि उस इंसान को सारे समाज के सामने बताया जाए कि इसको 10 साल की 20 साल की सजा हो गई है, क्योंकि अभी लोगों को ये लगता है कि आप क्राइम करेंगे और छूट जाए। जो कन्विक्शंस हैं उनके बारे में हमें लोगों को बताना पड़ेगा।
निर्भया मामले की वकील सीमा समृद्धि का कहना है कि कानून बने, मामले तेजी से निपटाए गए लेकिन घटनाओं में कमी नहीं हुई।
अगर रियलिटी की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नॉर्मल कोर्ट की तरह ही वर्क कर रहे हैं, और जो नॉर्मल कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें नॉर्मल बात है कि मैटर 10 और 15 ईयर्स तक चलेगा, और जो फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड होना चाहिए था वो नहीं है। फास्ट ट्रैक को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि फास्ट ट्रैक में क्या 7 ईयर लगता है। निर्भया केस अगर देखें तो अगर फास्ट ट्रैक में 7 ईयर लग रहा है तो नॉर्मल केसेस की अगर हम बात करें, कोर्ट्स की बात करें, तो 20 ईयर्स नॉर्मल बात होगी फिर उसी तरीके का। तो हमें अपने आप को फिर से रीडिफाइन करने की आवश्यकता है मैम। आफ्टर निर्भया केस वर्मा कमेटी, CRPC, IPC हर जगह अमेंडमेंट किए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कानून का कैसे हो ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। आपके पास सफिशेंट पुलिस नहीं है, आपके पास टेक्निकल पुलिस नहीं है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है, इसीलिए कोर्ट में मैटर जाते जाते 1 ईयर हो जाता है जब चार्जशीट फाइल होती है। और उसके बाद क्या होता है कि क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें हमारे पास सफिशेंट कोर्ट है तो हमारे पास कोर्ट्स भी नहीं है उतने। और एक और बात कि नंबर ऑफ केसेस की बात करें ये तो हम उन डेटाज की बात कर रहे हैं जो NCERB का डेटा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिस्टिक ग्राउंड पर अगर देखा जाए मैम तो करीब मैं कहूंगी 50% केसेस जो हैं वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, और वो केसेस इस तरीके के हैं जैसे मीटू कैंपेन चला मैम ये 20-25 इवन की 40 साल पुराने मैटर्स को लेकर के फ्रंट पर फीमेल आई, तो क्या ये सोसाइटी में इनको क्राइम नहीं कहा गया? वो भी तो क्राइम ही हुआ उनके अगेंस्ट, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आ पाई। और जो कि जर्नलिस्ट भी है मैम, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है।
दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों प्रतिरक्षा सप्ताह के अवसर पर विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरानी कैलेंडर के शहरीवार महीने की 31 तारीख को इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान की नई इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए चौतरफा हमला शुरू कर दिया। सद्दाम ने टीवी कैमरों के सामने आकर 1975 के अल्जीरिया समझौते को फाड़कर ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया।
6 मार्च 1975 को ईरान और इराक ने अल्जीरिया समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद संयुक्त सीमाओं पर होने वाली झड़पों को विराम लग गया था। हालांकि समझौते के लिए वार्ता और उस पर हस्ताक्षर बगदाद में हुए थे, लेकिन क्योंकि अल्जीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हुवारी बोमदीन ने इस समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, इसलिए यह अल्जीरिया समझौते के नाम से मशहूर हो गया।
इसके 6 साल बाद इराक के बासी शासन ने एक पक्षीय रूप से अल्जीरिया समझौते को फाड़कर फेंकने का ऐलान करते हुए ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध ऐसी स्थिति में ईरान पर थोपाया गया जब साम्राज्यवादी शक्तियां और विशेष रूप से अमेरिका ने तेहरान पर भारी दबाव बना रखा था और ईरानी सेना देश में क्रांति की वजह से अभी पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन के चरण में थी।
सद्दाम शासन ने जो युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया था उसके व्यापक उद्देश्य थे, जिसमें सर्वप्रथम ईरान की इस्लामी व्यवस्था का पतन था। लेकिन ईरानी जनता ने दिलो जान से अपने वतन की रक्षा की और न सिर्फ दुश्मनों को पराजित किया बल्कि प्रतिरोध के क्षेत्र में नई उपलब्धियों का इजाफा किया।
1979 में ईरान में इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति सफल हुई। उसके बाद प्रतिरक्षा के 8 वर्षों के दौरान भी इमाम खुमैनी ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। ईरान ने इस थोपे गए युद्ध में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की जिसकी पिछले 200 साल के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। पहली बार ऐसा हुआ कि आसमान युद्ध में ईरान ने अपनी एक बालिश्त जमीन पर भी कब्जा नहीं होने दिया और अपने बलबूते पर ये पूरी जंग लड़ी।
इमाम खुमैनी ने इस युद्ध में ईरानी जनता द्वारा किए गए प्रतिरोध के बारे में कहा था, हमने इस लड़ाई में दुनिया को नोचने और खसोटने वालों के नकली चेहरे से नकाब उतार दिया है। इस लड़ाई में हमने दोस्तों और दुश्मनों को पहचाना है। हम युद्ध में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमने इस लड़ाई में पूर्व और पश्चिम की 2 महाशक्तियों के अहंकार को तोड़ा है।
वास्तविकता यह है कि इस्लामी क्रांति ने ईरानी राष्ट्र और इस्लामी समाज को मूल्यवान उपलब्धियां उपहार स्वरूप प्रदान की। इन उपलब्धियों को इस्लामी और जन प्रतिरोध संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को मजबूत बनाना, धार्मिक विश्वासों का विकास, प्रतिभाओं और रचनात्मकता का उदय, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देना और महान शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहन देना और इस्लामी जागरूकता उत्पन्न करना ऐसी उपलब्धियां हैं जो 8 साल की पवित्र प्रतिरक्षा के दौरान सामने आई हैं।
पवित्र प्रतिरक्षा से उत्पन्न होने वाली प्रतिरोध की संस्कृति धार्मिक विश्वासों की वजह से भौगोलिक सीमाओं से निकलकर पूरे क्षेत्र और विश्व में फैल गई। क्षेत्र में इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के विस्तार को ईरान की पवित्र प्रतिरक्षा के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है। आज ईरान रक्षा शक्ति के क्षेत्र में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, क्योंकि उसने मिसाइल और ड्रोन विमान जैसे हथियार बना लिए हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय पानियों में प्रभावशाली रूप से उपस्थित है।
आज ईरान की नौसेना विदेशी शक्तियों पर निर्भरता के बिना दूर दराज के समुद्रों में उपस्थित है। इस सेना के योद्धा देश के हितों और जहाजों की रक्षा कर रहे हैं। ड्रोन विमानों के निर्माण में ईरान की आश्चर्यचकित करने वाली प्रगति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ईरान के शाहिद, मुहाजिर, कमान 22, सीमोर, गजा और कर्रार ऐसे ड्रोन विमान हैं जो ईरानी सेना के विशेषज्ञों ने बनाए हैं।
ड्रोन विमान के क्षेत्र में ईरान की तकनीक सिर्फ उसके निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ड्रोन हमलावर ड्रोनों को ट्रेस कर सकते हैं और उन्हें गिरा सकते हैं। ईरान ने अपनी इसी तकनीक के जरिए अमेरिका के आधुनिक जासूसी ड्रोन विमानों का शिकार किया है। इसे ईरानी सेना की प्रगति की सिर्फ एक झलक कहा जा सकता है।
ईरान ने विभिन्न रेंजों वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को डिजाइन और उनका उत्पादन किया है। इसे रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। ईरान के शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में फातेह, कयाम, इमाद, सिजील, खुर्रम शहर, दिसफूल, फातेह मुबीन और राद 500 का नाम लिया जा सकता है। 1945 सैन्य वेबसाइट ने अपने एक विश्लेषण में मध्य पूर्व में ईरान को ऐसा देश बताया है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यद्यपि ईरान सैन्य शक्ति की दृष्टि से अमेरिका और चीन के बराबर नहीं है, लेकिन ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का उत्पादन किया है ताकि वो अपनी रक्षा को सुनिश्चित बना सके और हर हमलावर को कभी नहीं भूलने वाला सबक सिखा सके।
यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विभिन्न प्रकार के बख्तरबंद वाहनों और उपकरणों के निर्माण के साथ ही एंटी आर्मर हथियार जैसे कि तोप, रॉकेट लॉन्चर और विभिन्न प्रकार के एंटी आर्मर मिसाइलों को ईरान में विकसित किया गया है। वर्तमान में एंटी आर्मर ऑपरेशनों के लिए एक सैन्य इकाइयों को एंटी आर्मर मिसाइलों से लैस किया जाता है, इसलिए दुनिया की महत्वपूर्ण सेनाएं एंटी आर्मर मिसाइलों से लैस होती हैं, जो टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के कवच को भेदने के साथ साथ नए खतरों से निपटने में सक्षम होते हैं।
इसके अलावा ईरान ने एंटी मिसाइल सिस्टम बावर 373 बनाकर गत 10 वर्षों के दौरान बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि विश्व के विकसित देशों ने यह मार्ग 70 वर्षों में तय किया है, जबकि ईरान ने एक ही दशक में इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तकनीक और अनुभव प्राप्त कर लिया है। इस सिस्टम में जो मिसाइलें प्रयोग की जाती हैं वो भी विविधतापूर्ण हैं और मिसाइलों को जो राडार गाइड करता है वो ईरानी है और उसका मॉडल मिराज 4 है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जंग साम्राज्यवादी शक्तियों ने सद्दाम के माध्यम से ईरान पर थोपी थी उसके परिणाम ईरान के पक्ष में रहे और आज रक्षा के क्षेत्र में ईरान को टक्कर देना आसान नहीं है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अलउज़्मा सैयद अली खामनाई इस संदर्भ में कहते हैं, ईरानी राष्ट्र की 8 वर्षीय पवित्र प्रतिरक्षा उत्कृष्टता एवं सुंदरता का बेहतरीन प्रतीक है। एक राष्ट्र अपने जीवन के इतिहास में जिसका प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन शहीद और शहादत एक ऐसा चमकता हुआ नगीना है जो इस आश्चर्यचकित समूह में सबसे अधिक मूल्यवान और विशेष है। यह विशिष्टता मानवीय कुर्बानी का नतीजा है जिसने भौतिक जीवन के समस्त आयामों को ईश्वरीय इच्छा के सामने नजरअंदाज कर दिया और हर चीज को इस मार्ग पर न्योछावर कर दिया।
امام خمینی نے یدھ کی چنوتیوں کو کرانتی کے وستار کے اوسر میں بدل دیا اور کہا یدھ میں پرتی دن ہمیں ایسی برکتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جن سے سمست کشتروں میں ہم نے لابھ اٹھایا ہے۔ ہم نے یدھ میں اپنی کرانتی کو وشو بھر میں نریات کیا۔ ہم نے اپنی پیڑا اور اتیاچاریوں کے اتیاچاروں کو یدھ میں ثابت کر دیا۔ یدھ میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یدھ میں ہم نے دو شکتیوں کے اہم کو چکنا چور کر دیا۔ یدھ میں ہم نے اپنی اسلامی کرانتی کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یدھ میں ہم نے لوگوں کے بیچ بھائی چارے اور دیش سے پریم کو محسوس کیا۔ یدھ میں ہم نے وشو واسیوں اور شیتری لوگوں کو دکھا دیا کہ سمست شکتیوں کے مقابلے میں ورشوں تک رکشا کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ کارکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
تو دوستو یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔